चौरी चौरा कांड। उधर गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून की सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए लगातार दबाव पड़ रहा था। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भावी रणनीति तय करने की पूरी जिम्मेदारी गांधी जी पर सौंप दी थी। उधर सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील और वायसराय के नाम गांधी जी के पत्र का सारोकार पर कोई असर नहीं पड़ा। गांधी जी ने लिखा कि यदि सरकार नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी, तो वह देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने को बाध्य हो जाएंगे। सरकार पर जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने मजबूर होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। यह आंदोलन वारदोली तालुका सूरत से शुरू होने वाला था। गांधी जी ने देश की जनता से अपील की कि वह पूरी तरह अनुशासित और शांत रहे, जिससे सारा ध्यान वारदोली पर ही केंद्रित किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश कांड ने वारदोली में प्रस्तावित आंदोलन को 6 साल के लिए रोक दिया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला था। कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोलीबारी से जुलूस में शामिल सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए, उन्हें भीड़ ने मार डाला और आग में फेंक दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस फैसले को स्वीकृति देने की अपील की। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी के निर्णय ने एक विवाद खड़ा कर दिया, एक ऐसा विवाद जिस पर आज भी संगोष्ठियों और सम्मेलनों में बहस होती है। इतिहास की किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है और आज भी लिखा जा रहा है। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व अन्य नेता यह खबर सुनकर भौचक्के रह गए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूर दराज के गांव में कुछ लोगों की गलत हरकतों का खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते। कई लोगों को लगा कि महात्मा गांधी में अब नेतृत्व की क्षमता नहीं रह गई है, वे असफल हो गए हैं और उनकी लोकप्रियता के दिन अब खत्म हो रहे हैं। ब्रितानी मार्क्सवादी रजनी पाम दत्त और उनकी बनाई हुई परंपरा पर चलने वाले कई और टीकाकारों ने भी गांधी के निर्णय की आलोचना की। गांधी के इस निर्णय को वे बतौर सबूत पेश करते हैं कि गांधी जी अमीर वर्गों के हितों का ख्याल रखते थे। इनका तर्क है कि गांधी ने यह निर्णय महज इसलिए नहीं किया कि चौरी चौरा की घटना उनके अहिंसक सिद्धांत के विरुद्ध थी, बल्कि उन्हें यह महसूस होने लगा था कि भारतीय जनता अब जुझारू संघर्ष के लिए तैयार हो रही है। अमीर शोषकों के खिलाफ कमर कस रही है। गांधी को लगा कि आंदोलन की बागडोर उनके हाथ से निकलकर लड़ाकू ताकतों के हाथ में जाने वाली है। उन्हें लगा कि पूंजीपतियों और भूस्वामियों के खिलाफ लड़ाई होने ही वाली है। इन्हीं के हितों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आंदोलन वापस लिया। ये लोग अपने तर्क के लिए वारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को वारदोली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जहां यह प्रस्ताव पारित हुआ जो वारदोली प्रस्ताव के नाम से मशहूर है, को बतौर सबूत पेश करते हैं। इनका कहना है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा के साथ साथ किसानों से कर और काश्तकारों से लगान देने की अपील भी की थी। आंदोलन वापस लेने के पीछे गांधी का असली मकसद यही था। हमारे ख्याल में गांधी जी के आलोचकों ने उनके साथ पूरी तरह न्याय नहीं किया। एक दूर दराज के गांव में हिंसात्मक वारदात आंदोलन वापस लेने का कारण नहीं हो सकती, यह तर्क वजनदार नहीं दिखता। गांधी ने बार बार कहा था कि बारदोली में अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के अन्य हिस्सों में किसी भी तरह का आंदोलन नहीं होना चाहिए, अहिंसक आंदोलन भी नहीं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ जिला इकाइयों को अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी थी। गांधी जी ने निर्देश दिया कि वह अपनी अनुमति वापस ले लें। गांधी जी शायद सोचते थे कि इस समय देशव्यापी आंदोलन छेड़ने से हिंसा भड़क उठने का खतरा है, जैसा कि 1921 में बम्बई में और बाद में चौरी चौरा में हुआ था। इस तरह की वारदातों से सरकार को पूरे देश में आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कदम उठाने का बहाना मिलता। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरह की कार्रवाइयों से अहिंसक असहयोग आंदोलन की समूची रणनीति विफल हो जाएगी। अहिंसक आंदोलन की रणनीति यह थी कि दमनकारी सत्ता यदि इस आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करेगी तो उसका चरित्र बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि अहिंसक और निहत्ते लोगों पर हमले से पूरा जनमत उसके खिलाफ हो जाएगा। इस प्रकार यह कहना गलत है कि चौरी चौरा कांड और बारदोली आंदोलन प्रकरण का कोई आपसी संबंध नहीं था। बारदोली आंदोलन को दबाने के लिए सरकार को चौरी चौरा की घटना का बहाना मिल जाता, सरकार ही यह संबंध बना देती। गांधी जी का शायद यह अनुमान था कि चौरी चौरा कांड ने बारदोली से व्यापक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की संभावनाओं को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। उनका मानना था कि यदि इस समय बारदोली में आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार चौरी चौरा कांड का बहाना लेकर कार्यकर्ताओं का दमन करेगी और अवज्ञा आंदोलन शुरू में ही विफल हो जाएगा। आंदोलन वापस लेने के पीछे गांधी जी की मंशा आंदोलन की ऊर्जा को बरकरार रखने व जनता को हतोत्साहित होने से बचाने की थी। हालांकि आंदोलन वापस लेने की घोषणा से भी जनता का एक बहुत बड़ा तबका निराश हुआ था, लेकिन यदि सत्ता को दमन का बहाना मिलता और वह दमन पर उतारू हो जाती तो जनता में इससे कहीं अधिक निराशा व्याप्त होती, जैसा 1932 में हुआ। यह नहीं भूलना चाहिए कि असहयोग आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देशव्यापी जनसंघर्ष का प्रथम प्रयास था। शुरुआती दौर में इस पर किसी तरह का हमला घातक सिद्ध होता, आंदोलनकारियों में ही नहीं जनता में भी निराशा व्याप्त हो जाती। दूसरा तर्क है कि गांधी ने लड़ाकू ताकतों के बढ़ते प्रभाव से डर कर आंदोलन वापस लिया, सच्चाई से दूर है। चौरी चौरा कांड को बतौर सबूत पेश किया जाता है, पर चौरी चौरा में पुलिस थाने पर हमला करने वाली भीड़ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे यह लगे कि ये लोग जमींदारों पूंजीपतियों के खिलाफ संगठित हो रहे थे या संघर्ष कर रहे थे। आर्थिक संबंधों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने जैसी भी कोई बात नहीं थी। ये लोग पुलिस के दुर्व्यवहार से नाराज हो गए थे और अपना गुस्सा उन्होंने पुलिस पर ही उतारा। उत्तर प्रदेश और मालाबार में किसान आंदोलन तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। अवध के ग्रामीण इलाकों में कहीं कहीं एका आंदोलन चल रहा था, पर यह जमींदारी को उखाड़ फेंकने के लिए था। इस आंदोलन की मांग थी कि जमींदार अवैध कर न वसूलें और मनमाने ढंग से मालगुजारी न बढ़ाएं। एका आंदोलन में शामिल करने से पहले सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाती थी उसमें एक शपथ यह भी थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे। आंध्र के गुट्टूर जिले में कर अदायगी न करने का आंदोलन तो असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। यह सरकार के खिलाफ था और पूरी तरह अहिंसक था। इस तरह यह पता नहीं चल पाता कि वे कौन से जुझारू व लड़ाकू ताकतें थीं जिनसे गांधी जी डर गए थे। तीसरा तर्क यह है कि बारदोली प्रस्ताव ने किसानों और काश्तकारों से कर व लगान की अदायगी करने को कहा और जमींदारों को यह विश्वास दिलाया कि उनके अधिकारों को कम करने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है। आरोप है कि आंदोलन वापस लेने के पीछे वास्तविक उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। यह आरोप गलत है। कांग्रेस का इसके पीछे कोई छिपा मंतव्य नहीं था। सच तो यह है कि पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कभी भी जमींदारों के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं था। अतः बारदोली प्रस्ताव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की नीतियों की महज पुष्टि की थी। कर न अदा करने का आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो कर अदा न करने का आंदोलन कैसे चलता? गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने के पीछे शायद एक और कारण था। 1921 की दूसरी छमाही के शुरू होते होते आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था। छात्र स्कूलों में और वकील अदालतों में लौटने लगे थे। व्यापारी वर्ग विदेशी कपड़ों के स्टॉक से चिंतित होने लगा था। बैठकों और रैलियों में लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। हालांकि कुछ जगहों जैसे बारदोली गुजरात और गुट्टूर आंध्र में राजनीतिक गतिविधियां काफ़ी तेज थीं और लोग संघर्ष के लिए आतुर थे, लेकिन 1921 के शुरू में पूरे देश में आंदोलन के प्रति जो उत्साह था अब वह नहीं रह गया था। सक्रिय राजनीति कार्यकर्ता और नेता तो चाहते थे कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, उसे तेज किया जाए, पर किसी जन आंदोलन की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता का कितना बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। हम यह बात दावे के साथ नहीं कह रहे हैं कि गांधी जी ने आंदोलन के प्रति घटते उत्साह के कारण ही इसे वापस लिया। चूंकि इस विषय पर शोध कार्य अभी अपूर्ण हैं, अतः हमारा कहना है कि इस बारे में कोई निष्कर्ष निकालते समय इन संभावना को भी ध्यान में रखा जाए। गांधी के आलोचक अक्सर यह भूल जाते हैं कि कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चलता, उसमें पड़ाव आता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह सुस्ताता है, थकावट दूर करता है और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जुटाता है। इसका मूल कारण यह है कि जनता की दमन सहने और बलिदान करने की शक्ति असीमित नहीं होती। इस तरह कभी आंदोलन वापस लेने की घोषणा या कभी समझौतावादी रुख अख्तियार करना जनता पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की सही रणनीति है। आंदोलन को वापस लेना विश्वासघात नहीं हुआ करता, यह तो रणनीति का हिस्सा है। हाँ, इस बात पर बहस हो सकती है कि आंदोलन सही समय पर वापस लिया गया है या गलत समय पर। वापस लेने का समय आ ही गया है, ऐसा सोचने के लिए शायद गांधी जी के सामने काफी कारण थे। गांधी जी ने जब यह निर्णय किया तो आंदोलन को लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका था। अंग्रेजी सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार था। इससे पहले कि आंदोलन की अपनी कमजोरियां उभर कर सामने आती और समर्पण की नौबत आती, चौरी चौरा कांड ने आंदोलन वापस लेने का एक मौका दिया। गांधी जी ने वादा किया था यदि उनकी नीतियों पर सही ढंग से अमल किया गया तो एक साल में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। साल खत्म हो गया, स्वराज की बात तो दूर, अंग्रेजी हुकूमत छोटी मोटी रियायतें भी देने को तैयार न थी, लेकिन क्या समूचा संघर्ष निरर्थक था? आंदोलन विफल रहा? इसका जवाब हाँ में नहीं दिया जा सकता। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं उपलब्धियां हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। पूरे देश में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इस आंदोलन का असर न पड़ा हो। बात दीगर है कि कहीं असर तेज था और कहीं कम। इसी आंदोलन ने यह दिखाया कि हिंदुस्तान की वह जनता जिसे फिरंगी मूर्ख दीनहीन समझते थे, आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति की वाहक हो सकती है, राजनीतिक संघर्ष शुरू कर सकती है। भारतीय जनता के त्याग और बलिदान ने दमनकारी सत्ता को जता दिया कि देश की आज़ादी की भूख पढ़े लिखों को ही नहीं, निरक्षर जनता को भी सताती है। आज़ादी के लिए गुलाम देश का हर नागरिक संघर्ष करेगा। यह बात अलग है कि सभी लोग आज़ादी के लिए संघर्ष के सारे दावपेच एकदम से नहीं समझ सकते थे, अपेक्षित अनुशासन नहीं बरत पाते थे, लेकिन असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, आज़ादी की भूख जगाई। यह पहला अवसर था जब राष्ट्रीयता ने गांवों, कस्बों, स्कूलों सबको अपने प्रभाव में ले लिया। शुरुआती दौर था यह, कमियां तमाम थीं, इसलिए सफलताएं भी कम मिलीं, लेकिन जो कुछ भी हासिल हुआ वह आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुआ। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। मुसलमानों की भागीदारी ने ही इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। कुछ क्षेत्रों में तो गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुसलमान थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि बाद के वर्षों में जब सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ लिया तो राष्ट्रीय आंदोलनों में सांप्रदायिक सद्भाव का वह चरित्र बरकरार न रह सका। असहयोग आंदोलन में गांधी जी व अन्य नेता मस्जिदों में भाषण देते थे। गांधी जी ने मुसलमान औरतों की सभा में भाषण किया, लेकिन यह सौहार्द और एकता आज़ादी के लिए बाद के संघर्षों में नहीं दिखी। फिलहाल 12 फरवरी 1922 को आंदोलन में जो पड़ाव आया था वह अस्थायी साबित हुआ। मोंटेग्यू और बर्केनहेड ने चुनौती दी थी कि भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता, और अगर चुनौती दी गई तो इसका उत्तर पूरी ताकत से दिया जाएगा। गांधी ने वह आंदोलन वापस लेने के बाद 23 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में अपने लेख में इस चुनौती का उत्तर दिया कि अंग्रेजों को यह जान लेना चाहिए कि 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होकर रहेगा, चाहे एक महीना लग जाए या एक साल लग जाए, कई महीने लग जाएं या कई साल लग जाएं, अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 के विद्रोह के समय किया था, फैसला होकर रहेगा।